Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Amit Goyal.
Namaskar, Market Mantra कार्यक्रम में आपका स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों में. तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ लालिमा अनिजा.
जी, आपने अच्छा ओवरव्यू दे दिया प्रोग्राम का. लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज को-चेयर सेवंथ इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस इन न्यू दिल्ली टुडे. India Germany sign multiple MOUs on green hydrogen technology and trade to boost bilateral ties. Domestic benchmark indices continue their downward trend for the fifth straight session. Sensex tanks over 650 points and Nifty settles below 24,200. And global crude oil prices rise. Brent crude trades at $74.93.
आर्थिक सुर्खियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने नई दिल्ली में आज सातवें अंतर सरकारी परामर्श समूह की सह अध्यक्षता की. भारत और जर्मनी में हरित हाइड्रोजन तकनीक और व्यापार को मजबूत करने के लिए विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार पांचवें सत्र में गिरावट का दौर. सेंसेक्स में 650 अंक से अधिक की गिरावट. निफ्टी भी 24,200 के स्तर से नीचे दर्ज. और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी. ब्रेंट क्रूड $74.93 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज हुआ. सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने नई दिल्ली में आज सातवें अंतर सरकारी परामर्श समूह IGC की बैठक की सह अध्यक्षता की. IGC के अंतर्गत भारत और जर्मनी दोनों पक्षों के मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारी वाली क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श के बाद उसके निष्कर्षों को प्रधानमंत्री और चांसलर को प्रस्तुत करते हैं. IGC की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले दो वर्षों में दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और रणनीतिक संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति की है. उन्होंने कहा कि रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और सतत हरित विकास के क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास का प्रतीक बन गया है.
हमने ग्लोबल स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी के निवेश पर उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है और आज ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप भी जारी किया है. हमें खुशी है कि भारत और जर्मनी के बीच शिक्षा, स्किलिंग और मोबिलिटी पर काम चल रहा है. जर्मनी द्वारा जारी की गई स्किल लेबर मोबिलिटी स्ट्रेटेजी का स्वागत है. मेरा विश्वास है कि आज की ये मीटिंग हमारी पार्टनरशिप को नई ऊंचाई पर ले जाएगी.
दोनों नेताओं ने नई दिल्ली में 18वीं एशिया प्रशांत जर्मनी व्यापार सम्मेलन को भी संबोधित किया. सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यता, तकनीक, नवाचार और अवसंरचना को भारत के विकास का मूल तत्व बताया. प्रधानमंत्री ने बताया कि जर्मनी कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए वार्षिक वीजा 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कर रहा है. सम्मेलन को संबोधित करते हुए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भारत और जर्मनी के आपसी सहयोग को वक्त की जरूरत बताया.
Today we are meeting in the world's biggest democracy, the fastest growing major economy in the world with the most rapidly expanding renewable energy sector of any major economy, a country at the heart of the world's most dynamic region, the Asia Pacific. In a nutshell, the Asia Pacific Conference has come to the right place at the right time.
All right, India and Germany today signed multiple MOUs and agreements ranging from green hydrogen to innovation and technology to boost bilateral relationship. The MOUs and agreements were exchanged in the presence of Prime Minister Narendra Modi and German Chancellor Olaf Scholz in New Delhi after delegation-level talks. India and Germany expressed their commitment for the Indo-German Green Hydrogen Roadmap along with innovation and technology. Both the nations also signed MOU on cooperation in the field of skill development and vocational education and training. Besides, the two sides also exchanged 3 joint declarations of intent in the fields of employment and labor, research and development on advanced materials and green urban mobility partnerships. So Amit, I think it's a few years ago, one would not have imagined so many MOUs being signed between India and Germany. We consider Germany a developed nation, and India now, it's a changed scenario now. It's a new world order where maybe India is handholding Germany to some extent, considering that our GDP growth is now 7% plus, Germany's is much lesser, and we are now on the path of becoming a developed nation by 2047.
लेकिन लालिमा, जर्मनी के बारे में खास तौर पे जो एक अच्छी चीज है, जर्मनी पूरे विश्व के लिए नई तकनीक हो या नया मशीनरीकरण हो या कोई भी नया इनोवेशन हो, पूरे विश्व का जो इंजीनियरिंग का जो मेन हब है वो जर्मनी कहलाता है. किसी भी तरीके की कोई भी तकनीक हो या कोई भी नया इनोवेशन हो, या वहां पे R&D रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत ही उन्नत अवस्था में है. इन सारी बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आज जुड़ेंगे वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक विशाल दहिया. विशाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
धन्यवाद. थैंक यू.
विशाल, जिस तरह की अभी मैं और मेरी सहयोगी लालिमा चर्चा कर रहे थे भारत और जर्मनी के बारे में, जर्मनी विश्व का, जिस तरह से मैंने भी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया कि जर्मनी पूरे विश्व को एक नई तकनीक, चाहे वो अगर हम भारत के बारे में ही नहीं विश्व के बारे में बात करें, तो रक्षा, रेल, सड़क या किसी भी तरीके का क्षेत्र हो, वहां पे जो जर्मन की इंजीनियरिंग है उससे बेहतर नहीं मानी जाती आज के दौर में भी. अगर भारत और जर्मनी, भारत का जो युवा फोर्स है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भारत का जो यंग फोर्स है और जर्मनी की जो टेक्निक है, अगर दोनों आपस में मिल जाते हैं तो विश्व को एक चमत्कारिक रूप से एक नया आयाम प्रस्तुत कर सकते हैं. आपका क्या कहना है?
टू एड टू अमित्स क्वेश्चन, दे आर परफेक्शनिस्ट. कैन वी ऑल्सो बोरो अ बिट ऑफ परफेक्शनिज्म फ्रॉम जर्मनी टू एड टू हिज पॉइंट?
वेल, यू आर राइट लालिमा जी, एंड आई विल कम टू दैट पार्ट एज वेल, बट रिस्पोंडिंग टू यू नो अमित गोयल जी हियर. देखिए, 20वीं शताब्दी का जो पहला हिस्सा था उसमें भी जर्मनी को एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस माना जाता था, और दो विश्व युद्ध हुए उसके बाद कुछ समय जरूर लगा उनको वापस उठ खड़े होने में, लेकिन वो जो एक एक, एक जिसे कहा जाए कि एक एक इनर पर्पस है, एक इनर पर्पस है, तो उसके चलते जो है ऐसा लग रहा है कि जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है और खासतौर पे जो जिसे हम हार्डकोर साइंस कहते हैं, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, क्योंकि देखिए ये जो समझौते हुए उनमें भी अब अगर आप मोटे तौर पर नजर डालें तो एक ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से इनोवेशन की बात हो रही है. तो ये दर्शाता है कि ये दो देश हैं, एक ऐसा देश जर्मनी जो कि लगभग 100 साल पहले भी तकनीक के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में दुनिया भर में आगे जो अग्रणी देश है उन्हीं में शामिल था, और एक ऐसा देश जो कि एक उभरती हुई विश्व ताकत है, विश्व पटल पर ना केवल आर्थिक रूप से बल्कि इंडस्ट्रियल रूप से भी अगर देखा जाए. तो इन दोनों देशों के बीच इन मुद्दों पर, खासतौर पर इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के मुद्दों पर समझौता होना, वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर समझौता होना, और जैसे अमित जी कह रहे थे कि साइंस एजुकेशन के क्षेत्र में भी जर्मनी से ज्यादा बेहतर जो उनके जो शिक्षण संस्थान हैं शायद ही विश्व में किसी और शिक्षण संस्थानों को माना जाता होगा, और हिंदुस्तान में भी ऐसे शिक्षण संस्थानों की कमी नहीं है. हम चाहे IITs की बात करें या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात करें या फिर एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, स्पेस साइंस के क्षेत्र में हमने जो बढ़ोतरी ली है, हमने जो बढ़त ली है उसकी बात करें, तो ये एक एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन गठजोड़ होने वाला है. और लालिमा जी, यू स्पोक अबाउट यू नो द आइडिया ऑफ देम बीइंग परफेक्शनिस्ट. ऑफ कोर्स यू नो वी विल हैव टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, एंड बीइंग परफेक्शनिस्ट अबाउट समथिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंगल टू द पाथ टू सक्सेस एज वेल. सो दैट्स वन एरिया. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, implementation of artificial intelligence or machine learning, or even when space sciences or other sectors where we are doing a lot better, there's nothing less than perfectionism which would be required.
One wonders what would Germany gain from India, and one wonders what India would gain from Germany. Yes, we talked about the knowledge, the technical know-how. For that so far so good. But it's interesting to note that Germany has now increased annual visa quota for skilled Indian professionals from 20,000 to 90,000. Our Prime Minister visualizes our country as being the skill hubs of the world. We have a demographic dividend having such a young population, and now we have a separate skill ministry, which shows the government is so serious about imparting skills. So back over, you know, we want to cross over from degree specific to being skill specific. So Germany will gain from India.
Well, yes, indeed. It's not about just Germany. Every other country on the face of this earth wants to gain from this dividend, this huge,
demographic dividend.
Demographic dividend, which India has. It's a huge potential in India, and specifically that potential presents itself, manifests itself in many ways to the highest degree possible in fields like software technology, in fields like hardcore sciences, in fields like electronic engineering, in fields like computer engineering, space sciences as well, as I've been pointing out, because all these European nations, and most of these either developed economies or economies which are almost at par with us, what they want from India is the talent pool which we have. Mm. And India knows the value of its talent pool. So, of course, the skill talent pool is very much in demand everywhere else. And how about we also, benefit from it in terms of, learning something from their technological developments and utilizing our talent pool. This becomes, I would call it, somebody would call it a wonderful combination. I would call it a deadly combination in the 21st century.
Also, Germany is known for having its residents. They make solar power and they sell solar power to the government. So we also have a similar scheme. I think we also get inspired by such schemes, right? So,
yes, indeed. Because India is the founder member of the ISA, the International Solar Alliance. As well. So there is a lot more to learn as far as we Indians are concerned and as far as the rest of the world is also concerned.
Right. भारत में बहुत बड़ी जो युवा फोर्स है और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, जो वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हो या डेटा मैनेजमेंट हो, इसमें भारत का जो युवा वर्ग है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. शायद यही वजह रही होगी जब जर्मनी ने इस तरह से कुशल पेशेवर लोगों के लिए जो वीजा है वो 20,000 से बढ़ा के 90,000, मतलब 4 गुना से अधिक अगर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो माना ही जा सकता है कि उनको अपनी चीजों को चलाने के लिए भी यहाँ की कौशलता की बहुत जरूरत है.
जी बिल्कुल. देखिए, और केवल जर्मनी एक ऐसा देश नहीं है. पिछले कुछ सालों में नजर डालें तो कई और ऐसे देश यूरोप और जो अमेरिकी महाद्वीप है उसमें भी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इस तरह के कदम उठाए हैं, और उनको लगता है कि ये बहुत बेहतरीन समय है, क्योंकि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं जैसे कि अमेरिका है या जैसे कि कैनेडा है या ऑस्ट्रेलिया है, वहां से हमने पिछले कुछ दिनों में खबरें सुनी है कि वो किस तरह से एक एक लिमिट लगाना चाहते हैं जो बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो बाहर से आने वाले प्रोफेशनल्स हैं उन पर. तो ये जो टैलेंट पूल है हिंदुस्तान का, भारत का जो टैलेंट पूल है, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही. वो हिंदुस्तान में भी काम करेगा लेकिन कहीं और जाके भी काम करना चाहेगा. तो इन देशों को लगता है, जर्मनी जैसे देशों को, मेरा आकलन ये है कि जर्मनी जैसे देशों को लगता है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, ये गोल्डन मोमेंट है कि अब भारत का वो टैलेंट पूल जो कि अब शायद अमेरिका नहीं जा पा रहा है या फिर ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पा रहा है या कनाडा नहीं जा पा रहा है, उसका इस्तेमाल हम क्यों ना करें. और भारत के लिए, जैसा कि लालिमा जी कह रही थी व्हाट इज इन इट फॉर इंडिया, तो भारत के लिए इसमें वो अपॉर्चुनिटी छुपी है जिसमें जर्मनी जैसी जो देश है जिसमें टेक्नोलॉजी को लेकर अलग अलग तरह के इनोवेशंस किए जा रहे हैं, अलग अलग तरह की रिसर्च की जा रही है, तो उस नॉलेज का, उस नॉलेज सेट का, उस स्किल सेट का इस्तेमाल जो भारत का युवा है उसके लिए किया
बेहतर तरीके से.
इंडीड, वी आल्सो सॉ दिस G20 समिट व्हिच वी होस्टेड वेरी सक्सेसफुली. वी सॉ दिस वाज बीइंग एंडोर्स्ड दैट स्किल मैन पावर मस्ट बी यूनिवर्सलाइज्ड एंड यू नो यूनिवर्सल नॉर्म्स मस्ट बी लेड आउट. We can export our skill talent.
जर्मनी को आमतौर पे पूरे विश्व में हमेशा नई तकनीक का, वहां का रिसर्च डेवलपमेंट, मतलब शोध जो है वो सबसे बेहतर स्थिति में है. चलिए नजर डाल लेते हैं वापस अब घरेलू शेयर बाजारों पे. लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट का दौर रहा. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.8% की गिरावट से 663 अंक लुढ़कर 80,000 के स्तर से नीचे 79,402 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.9% के नुकसान से 219 अंक गिरकर 24,181 के स्तर पर बंद हुआ. बीएसई मिड कैप सूचकांक में लगभग 1.5% और स्मॉल कैप सूचकांक में 2.5% की बड़ी गिरावट दर्ज हुई.
Alright, let's take a look at the stocks in detail now. Well, the domestic benchmark indices today continued their downward trend for the fifth straight session amid broad-based selling pressure and lackluster second quarter earning exports. earning reports. The BSE Sensex tanked 663 points or 0.8% to close at 79,402, while NSE Nifty dropped 219 points or 0.9% to settle at 24,181. The broader market at Bombay Stock Exchange also ended in negative territory. The mid-cap index declined nearly 1.5% and the small-cap index slid 2.4%. In the Sensex index, 21 out of 30 companies ended in negative territory. In the laggards, Indus Inbank plunged over 18.5%, Mahindra & Mahindra plummeted nearly 4%, Larsen & Toubro shed over 3.3%. Conversely, in the top gainers, ITC climbed more than 2%, Axis Bank gained over 1.5%, and Hindustan Unilever added almost 1%. In sectoral indices at the BSE, 19 out of 20 sectors logged losses, except FMCG, which added 0.5%. In the top laggards, oil and gas declined more than 3%, consumer durables slipped 2.7%, and services shed 2.6%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 841 companies advanced and 3,101 declined, while 79 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 30 companies hit their 23-week high, while 217 hit their 52-week low. On the rupee front, Amit?
Ji, antar banking videshi mudra bazaar mein dollar ke mukable rupiya mamuli giravat se 84.08 rupees प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. डॉलर इंडेक्स 104 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. विशाल, अगर भारतीय शेयर बाजारों की खासतौर पर बात करें तो जो पिछला समय है तकरीबन 15 दिन का, अगर हम समय की बात करें तो वहां पे कहीं ना कहीं अब दबाव आता हुआ नजर आ रहा है. हम 85,000 तक पहुंचे, उसके बाद करते करते अब 80,000 के स्तर के नीचे भी अगर सेंसेक्स आता है, हालांकि ठीक है ये दायरा सिर्फ 30 शेयरों का ही दर्शाता है, लेकिन अगर निफ्टी की बात करते हैं वहां पे भी 25,000 के स्तर और तकरीबन 24,000 के आसपास पहुंच चुका है. क्या हमारे पास ये मानने के पर्याप्त कारण है कि जो वैश्विक परिदृश्य चल रहा है जो कि स्थितियां अच्छी नहीं है, के साथ साथ जो दूसरी तिमाही के नतीजे हैं उसने भी बाजार के जो एक भरोसे को कहीं ना कहीं डगमगाया है, और वैश्विक परिदृश्य तो निश्चित तौर पे दबाव बनाने में फिलहाल कामयाब होता नजर आ रहा है. एफआईआईसी भी लगातार जबरदस्त यहां पे बिकवाली कर रहे हैं.
जी देखिए, आपने दो तीन बातों का जिक्र किया अमित जी, और मोटे तौर पर ये केवल 15 दिन की बात नहीं है. अगर पूरे अक्टूबर के महीने में जिस तरह से शेयर बाजारों में कारोबार रहा उस पर एक नजर डालकर देखें तो कई कारण हैं जिनको हम चिन्हित कर सकते हैं, जिन पर हम नजर डाल सकते हैं. सबसे पहला अगर आज की बात करें और पिछले एक दो दिन की बात करें तो जो दूसरी तिमाही के जो नतीजे आने थे और जो आने शुरू हो गए हैं वो बहुत उत्साहजनक नहीं है. तो आज का जो कारोबार रहा उसको ज्यादातर उसके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है, क्योंकि इंडसइंड बैंक हो या फिर एनटीपीसी हो और खासतौर पे उनकी जो परफॉर्मेंस भी रही है वो आज के शेयर बाजार पर. लेकिन वो आज की बात हुई. अगर हम पूरे महीने की बात करें और आपने 15 दिन की बात की तो देखिए एफआईआईज की जो बिकवाली है वो एक बड़ा कारण है. और मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं अभी आंकड़ों पर नजर डाल रहा था अक्टूबर के महीने के आंकड़ों पर, तो मोटे तौर पे इस पूरे महीने में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है जिसे हम विदेशी निवेशक कहते हैं लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए के आसपास की वो बिकवाली कर चुका है. अब अगर इसको कंपेरिजन करके देखा जाए तो लगभग पिछले 5 से 6 साल में अक्टूबर का महीना इकलौता ऐसा महीना है जिसमें इस हद तक FIIs ने बिकवाली की है. अब उसके कुछ कारण हैं. सबसे पहला कारण तो ये माना जा रहा है कि पिछले कुछ समय में चीन ने जो स्टिमुलस की घोषणा की है और जिस तरह से चीन के बाजार में जो शेयर बाजार है वहां का उसमें जो इवेल्युएशन है उनकी कंपनीज की वो भारत के बाजार में भारत की कंपनियों की जो इवेल्युएशन है उसके मुकाबले थोड़ी सी कम है. तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, जो विदेशी निवेशक है, उसको हमेशा ये लगता है कि वो फायदे के लिए पैसा लगाता है.
बिल्कुल.
और हमने ये देखा है ये एक साइकिल है, ये ऐसा नहीं है कि ये आज पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है. तो हमेशा ऐसा होता है कि जो विदेशी निवेशक है वो भारत के बाजार से पैसा निकालकर अब चाइना के बाजार में लगा रहा है ज्यादातर, अगर नजर मोटे तौर पर नजर डाल के देखें तो. इससे पहले चीन के बाजार से पैसा निकालकर, वियतनाम के बाजार से पैसा निकालकर भारत के बाजार में लगाया गया था. एक कारण ये है, यानी कि इसमें दो मिश्रित चीजें हो गई, एक तो इवेल्युएशन, ओवर इवेल्युएशन कुछ भारतीय कंपनियों की, और दूसरा जो चीन ने स्टिमुलस दिया और वहां उनको मौका दिखाई दे रहा है. दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनकी जो यील्ड है, जो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो यील्ड है वो लगातार 4% से ऊपर बनी हुई है. तो वो जो 10-year बॉन्ड जो है उसकी यील्ड की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां विदेशी निवेशकों को लगता है कि वो थोड़ा सा कम रिस्की अफेयर है अगर इन्वेस्ट करना है. तो अगर वहां 4% से के आसपास से ऊपर का अगर उनको रिटर्न मिल रहा है तो वो वहां रहना पसंद करेंगे. डॉलर जो है वो पिछले कुछ समय से लगातार अगर हम पीयर वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करके देखें तो उसमें मजबूती लगातार आ रही है, लगभग 104 के आंकड़े के आसपास है. तो मजबूत डॉलर भी उनको एक थोड़ी सी विदेशी निवेशकों को थोड़ा सा एक साहस देता है कि चलिए हम वापस या तो अमेरिकी बाजार आ सकते हैं या किसी और बाजार में जा सकते हैं. ये 2-3 बड़े कारण हैं, लेकिन इसके अलावा वैश्विक परिदृश्य भी है. वैश्विक जो बातें हैं जो जिस तरह की ग्लोबल जिसे कहा जाए जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भी नजर डाला जाए. अमेरिका में चुनाव है और अब अमेरिकी चुनाव केवल 10 दिन दूर रह गया है, तो वहां अभी भी अनसर्टेनिटी है, बहुत ही क्लोज टाइट रेस है पॉलिटिकली. तो देखिए उसका असर कुछ न कुछ तो आर्थिक बाजारों पर पड़ना ही पड़ना है. यूएस के बाजार पर पड़ता हमें दिख रहा है और उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है जो बाकी बाजार हैं उन पर भी पड़ता दिखेगा. और आखिरी सबसे बड़ी बात यह कि जो यूएस फेड से रेट कट की जो उम्मीद की जा रही थी, आज से अगर एक हफ्ते पहले की बात करें तो लगभग 100% उम्मीद ये थी कि 25.25 बेसिस पॉइंट जो है मतलब रेट कट होगा, और लगभग 58% उम्मीद ये थी कि 0.50 बेसिस पॉइंट जो है वो रेट कट हो सकता है. लेकिन अगर आज और कल के आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 90% ही उम्मीद है कि 25 बेसिस पॉइंट जो है मतलब रेट कट हो सकता है, और 50 बेसिस पॉइंट रेट कट होने की तो उम्मीद अब नहीं है. तो इन सब कारणों को अगर देखें मोटे तौर पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि भाई जो हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि आज सुबह उठे और हमें दिखा कि ये अचानक से रेड में जाना शुरू हो गया है. लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है और मैं 2 सेंटेंस में कह के खत्म करूंगा बात, और वो सिल्वर लाइनिंग ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने अक्टूबर के महीने में लगभग 1,00,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है, लेकिन इसी पीरियड के दौरान लगभग 21-22 अक्टूबर तक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स यानी कि DIIs ने लगभग 83,000 करोड़ रुपए की खरीद की है, यानी कि इन्वेस्ट किया है. यानी कि हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, खासतौर पे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि SIP के थ्रू भी इन्वेस्ट करते हैं, उनका भी एक बड़ा हिस्सा है इस इन्वेस्टमेंट में. वो अभी भी उनका विश्वास उनका फेथ भारतीय शेयर बाजार में बना हुआ है, और वो अगेन जैसा कि मैं हर बार कहता हूं बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट दैट द फंडामेंटल्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आर स्ट्रांग एनफ टू डील विद इवन सच अ लार्ज स्केल ऑफ यू नो मूवमेंट of investments by the FIIs.
And if you talk about Amitji just talked about the dollar rate. Dollar is strong as a currency. But Vishalji, do you think that dollar as the era of dollar as world currency is now up for challenge? Other currencies have their own problems, Eurozone, Japan, China, all of them have their own problems, and the full convertibility of rupee is still a way to go, although there are countries dealing with rupee now. We are trading with them in rupee. How do you see rupee vis-a-vis dollar now?
Well, rupee vis-a-vis dollar is a story which I believe has been going on for quite some time and is likely to go on, continue for some more time as well. But dollar in the interim becoming stronger doesn't mean that the US dollar is devoid of all its woes in terms of its global positioning as the market leader currency. There are challenges to dollar as well. So clearly, it looks like there is a scope, there is a room for other currencies to grow, and Indian rupee is there in the queue.
लेकिन अगर dollar index 104 के आसपास है, क्योंकि 101 तक आ गया था, अभी 104 पे है. उसके बावजूद भी वैश्विक बाजारों में हम देखते हैं कि सोना भी काफी तेज है, हालांकि सोने से संबंधित स्टोरीज हमारे पास आएंगी. ये दोनों का डॉलर भी का इंडेक्स भी बढ़ रहा है, सोना भी बढ़ रहा है, ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं. क्या सिर्फ अमेरिकी चुनाव इसका असर है, वैश्विक बाजारों पे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो उसका असर है, या इसके बीच में कुछ और भी?
देखिए बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं अमित जी. अमेरिकी चुनाव हो रहा है, वैश्विक जो घटनाक्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसराइल बनाम ईरान ईरान हो या रशिया बनाम यूक्रेन हो, उन सबका भी असर पड़ता है। लेकिन आपने डॉलर और सोने की बात की, तो देखिए हम एक चीज हमेशा याद रखें कि डॉलर जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत सारी हद तक जो है जो अमेरिका की इकोनॉमी है उसकी जो अर्थव्यवस्था है उस पर आजकल बहुत ज्यादा निर्भर करती है, और अमेरिकी अर्थव्यवस्था कोई बहुत अच्छी सेहत में पिछले कुछ सालों से नहीं रही है। लेकिन सोने की जहां तक बात है, सोना तो पूरी दुनिया में चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, हेज इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज करता है। तो जहां बाजार में थोड़े से बाजार थोड़ा सा लड़खड़ाता दिखाई देता है, सोने की कीमतों में हमें और ज्यादा उछाल दिखाई देगा, जो कि लाजमी भी है।
जी,
ऑलराइट, लॉट अबाउट गोल्ड एंड डॉलर एंड रुपी, लेट्स मूव ऑन। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज अर्ज द वर्ल्ड बैंक टू कोलैबोरेट विद कंट्रीज इन आइडेंटिफाइंग high priority skilling sectors based on data analysis and knowledge work with a focus on generating employment, skill matching and labor retention. In her intervention at the plenary lunch organized on the sidelines of the World Bank and IMF annual meetings in Washington DC, finance minister emphasized that jobs are one of the most pressing global issues. She highlighted the continued economic headwinds and rapid technological change that are redefining the skills required for youth to enter the job मार्केट।
नजर डालेंगे एशियाई यूरोपीय बाजारों पे। एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर मिला जुला रुझान रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक आधा प्रतिशत से अधिक की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। हांगकांग का हैंगसेंग लगभग आधा प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि जापान के निक्के में आधा प्रतिशत से अधिक और सिंगापुर के स्टेट टाइम सूचकांक में 0.3% तक की गिरावट भी दर्ज हुई। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांकों में मामूली बढ़त रही, जबकि जर्मनी का शेयर सूचकांक मामूली गिरावट से कारोबार करता नजर आया।
A look at the US markets now. Well, 2 out of 3 US indices rose yesterday, led by decline in treasury yields from a 3-month high. The Nasdaq composite gained more than 0.5% and the S&P 500 added 0.2%, while Dow Jones industrial average slipped 0.3%. And friends, we would like to inform our listeners, you all, that marking the 75th anniversary of the establishment of the Supreme Court of India, we will bring you an exclusive interview of the Chief Justice of India, Dr. Justice D.Y. Chandrachud, with Akashwani News tonight.
Akashwani News tonight will bring you an exclusive interview with Chief Justice of India, Dr. Justice D.Y. Chandrachud, where he will share his insights on significant issues and his fond memories as a presenter at All India Radio. Don't forget to tune into Akashwani Gold and additional frequencies tonight at 9:30 p.m.
All right, a look at the oil prices now. Well, oil prices rose today as escalating tensions in West Asia and a restart in Gaza ceasefire talks in the coming days kept traders on the edge. Brent crude was trading 0.7% up at $74.93 per barrel, and WTI crude gained 0.8% to trade at $70.75 per barrel when reports last came in.
नजर डाल लेते हैं सराफा बाजार पर। सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया। अंतिम समाचार मिलने तक 24 कैरेट सोना 0.2% की गिरावट से 78,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 0.4% की गिरावट से 96,880 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा भाव 0.2% की गिरावट से 78,155 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा, जबकि चांदी का वायदा भाव 0.4% की गिरावट से 96,620 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। समय की थोड़ी सी बाध्यता जरूर है, लेकिन फिर भी मैं सोना और चांदी में, हम पिछले काफी दिनों से बात कर रहे थे कौन 1 लाख के स्तर को पैर, चांदी ने वो आंकड़ा पार कर लिया,
बाजी मार ली।
लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो हल्का सा दबाव भी आया, तकरीबन 97,000 के आसपास है। 1,02,000 तक पहुंचने के बाद 97,000, अगर हम खुले बाजार की मोटे तौर पे बात करें तो चांदी और सोने में अभी कितनी मजबूती नजर आती है?
देखिए, मेरा हमेशा से मानना रहा है और मैं फिर कहूंगा कि सोना जो है फिर भी काफी मजबूत रहेगा, क्योंकि हम अगर हिस्टोरिकल डेटा की तरफ नजर डालें तो चांदी की जो मजबूती है वो बहुत तेजी से आती है, लेकिन बहुत तेजी से जाती भी है।
लेकिन अगर हम बात करें जनवरी से अगर अभी तक सोने ने अगर 30% का लाभांश दिया है, लेकिन चांदी ने तो कुछ महीनों में ही से ज्यादा दे दिया।
मैं यही कह रहा था कि लॉन्ग टर्म थोड़ा सा पर्सपेक्टिव हमको यहाँ रखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखता हूँ, तो अगर पिछले लगभग 10 या 20 सालों का आंकड़ा देखेंगे तो उस आंकड़े के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि सोना फिर आखिर सोना ही है।
इट्स ऑल्सो बीइंग सेड दैट सोलर इज बीइंग इन सोलर पीवी सेल्स वी यूजिंग सिल्वर एज अ क्रिटिकल कंपोनेंट दैट मे बी वन ऑफ द रीजन ऑफ इट्स
इंडस्ट्रियल तो विशाल कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद।
थैंक यू, धन्यवाद अमित।
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स को-चेयर 7th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस इन न्यू दिल्ली टुडे। इंडिया जर्मनी साइन मल्टीपल MOUs ऑन ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड टू बूस्ट बायलैटरल टाइज। डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस कंटिन्यू देयर डाउनवर्ड ट्रेंड फॉर द 5th स्ट्रेट सेशन। सेंसेक्स टैंक्स ओवर 650 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स बिलो 24,200 एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज। ब्रेंट क्रूड ट्रेड्स एट $74.93। वेल फ्रेंड्स, दैट्स ऑल we have for you in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.